आज है 10 सितंबर दिन शनिवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं सुशीला सिंह। सीरिया में हिंसा खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच बनी सहमति। हरियाणा के मेवात में बिरयानी के नमूनों में गोमांस की पुष्टि।
ये 7 के 7 सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें जो है गाय का मांस पाया गया है।
अयोध्या के हनुमानगढ़ी में महंत ज्ञानदास से मिले राहुल गांधी।
बता दें, एक कहावत है, अवधपुरी में रम रहे रघुकुल अवध नरेश, यही पर विपदा परत है सोई आवत ही देश। अब हम इसका मतलब आप समझ जाइए, हम बता दिया गोलमाल जो है गप है, समझे आप।
भारतीय रेलवे ने 3 गाड़ियों में लागू किया फ्लेक्सी फेयर सिस्टम। ये सब थोड़ी देर में, पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। सीरिया में शांति बहाली के लिए जिनेवा में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक योजना पर सहमति बन गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए अब तक की सबसे विस्तृत योजना है और सभी पक्ष अगर इस पर सहमत हुए तो सीरिया के भविष्य के लिए नया रास्ता खुल सकता है। इसके तहत 12 सितंबर की शाम से ही युद्ध विराम लागू करने और विपक्षी गुटों पर सीरिया सरकार के हवाई हमले रोकने का प्रस्ताव रखा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के विरोध के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले के सिलसिले में एक अहम बिल को पारित कर दिया है। 9/11 हमले को पीड़ित परिवारों को सऊदी अरब सरकार पर मुकदमा करने की इजाजत देने वाले विधेयक को पास किया गया है। इससे पहले मई में इसे सीनेट ने भी मंजूरी दे दी थी, हालांकि राष्ट्रपति ओबामा ने इसे वीटो करने का संकेत दिया है। 9/11 हमले में मारे गए एक फायर फाइटर के भाई क्लिफर्ड रसल ने उम्मीद जताई कि विधेयक पारित कर दिया जाएगा और उन्हें न्याय मिलेगा।
मुझे अच्छा लग रहा है कि इसे पास किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति इसे वीटो करेंगे और ये वापस जाएगा। फिर सीनेट और हाउस में 2/3 समर्थन चाहिए ताकि उनके वीटो को खारिज किया जा सके। उसके बाद मुकदमे की तरफ बढ़ सकते हैं। ये थे क्लिफर्ड रसल के शब्द। सऊदी अरब सरकार ने इस बिल को पारित किए जाने पर अमेरिका के से रिश्तों में तनाव के संकेत दिए हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण का कड़ा विरोध जताया है। चीन और अमेरिका समेत 15 सदस्य देशों की बैठक में तय किया गया कि तुरंत प्रभाव से उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जाएगी। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा कि उत्तर कोरिया ने अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया है, ये संयुक्त राष्ट्र के समझौते का उल्लंघन है और सुरक्षा परिषद को इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गिरफ्तार की गई 3 संदिग्ध महिलाओं को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से निर्देश मिलते थे। पेरिस के अभियोजक फ्रांस्वा मोलेंस ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आईएस महिलाओं को चरमपंथी बनाना चाहता था। रविवार को पेरिस के मशहूर नोत्रदाम कैथेड्रल के पास संदिग्ध गाड़ी से गैस के कनस्तर बरामद किए गए थे, जिसके बाद बुधवार को इन 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दौरान एक पुलिस अधिकारी पर महिला ने चाकू से वार कर दिया था। इन महिलाओं में से एक 19 वर्षीय महिला ने खत में आईएस के लिए समर्थन जताया था। अमेरिकी अधिकारियों ने लोगों से सैमसंग के नए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने से इनकार मना किया है। सैमसंग के फोन की बैटरी में आग लगने और धमाकों की घटनाओं के बाद ये चेतावनी दी गई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। सीरिया में हिंसा खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस एक योजना और राजनीतिक हस्तांतरण की शुरुआत के लिए सहमत हो गए हैं। इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि 7 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति बनी है जो आने वाले सोमवार से लागू होगी। जिनेवा में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोव से बातचीत के बाद अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि ये योजना निर्देशनात्मक और अब तक की सबसे विस्तृत योजना है। पूरा ब्यौरा सुना रही है हरिता कांडपाल।
अमरीका और रूस सीरिया में युद्ध खत्म करने के लिए और राजनीतिक हस्तांतरण की शुरुआत के लिए एक योजना पर सहमत हो गए हैं। जिनेवा में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव के साथ एक दिवसीय बातचीत के बाद अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि यह योजना अब तक की सबसे विस्तृत योजना है। उन्होंने कहा कि अगर सभी पक्ष इसे मानेंगे तो सीरिया के भविष्य के लिए राजनीतिक वार्ता शुरू करने का रास्ता खुल सकता है। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि अगर सीरियाई सरकार गंभीरता दिखाए तो वो इस योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा कि सीरियाई सरकार से इस बारे में बातचीत हुई है और सीरिया की सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार है।
We and the United States take the obligation to do all of our best to engage.
सर्गेई लवरोव कह रहे थे, हम और अमेरिका सीरिया के सभी पक्षों को इस योजना को लागू करने के लिए राजी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और सीरियाई सरकार को बता दिया गया है और वो इसे लागू करने के लिए तैयार है। सीरियाई सरकार रूस और अमेरिका के इस साझा प्रयास का समर्थन करती है। जो हमारी भूमिका होगी उसे हम पूरी तरह निभाएंगे, लेकिन ये भी बता दूं कि सब कुछ हम पर निर्भर नहीं करता। सर्गेई लवरोव के शब्द। इस योजना में 12 सितंबर को सूरज डूबने के साथ ही सीरिया में युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। जॉन कैरी ने कहा कि इस समझौते का मुख्य बिंदु है कि सीरियाई सरकार को अमेरिकी समर्थन वाले विपक्ष की मौजूदगी वाले इलाकों में हवाई हमले रोकने होंगे। उन्होंने कहा कि सीरिया में हो रहे अंधाधुंध हमलों को रोककर आम लोगों को होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकना होगा। सरकारी सुरक्षा बलों और विपक्षी लड़ाकों को अलेप्पो की सड़कों से हटाना होगा ताकि सहायता एजेंसियां बेरोक टोक अंदरूनी इलाकों तक पहुंच सके। जॉन कैरी ने कहा कि अगर कुछ समय तक युद्ध विराम लागू रहा तो रूस और अमरीका नुसरा फ्रंट और चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संयोजित हमले करेंगे। अमेरिका और सीरियाई विपक्ष सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाना चाहते हैं, जिसके लिए असद और उनके सहयोगी तैयार नहीं हैं।
सीरिया में हिंसा खत्म करने के लिए बनी सहमति, ये थी हरिता कांडपाल। हरियाणा सरकार के मुताबिक राज्य के मेवात इलाके से लिए गए बिरयानी के नमूनों में गौमांस की पुष्टि हुई है। सरकार का कहना है कि इस मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं हरियाणा गोसेवा आयोग के प्रमुख भनीराम मंगला का दावा है कि मेवात में पंचायतों ने फैसला किया है कि बकरीद पर गायों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। एक रिपोर्ट के साथ वात्सल्य राय।
हरियाणा के मेवात इलाके में बिरयानी में गौमांस होने के आरोपों के बाद लिए गए नमूनों की रिपोर्ट आ गई है। इसी हफ्ते लिए गए इन नमूनों को जांच के लिए हिसार की लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी की लैब में भेजा गया था। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर श्रीकांत ने मीडिया को बताया,
सर कितने सातों का जो जांच होती है वो प्रदेश में केवल अपने लुभाषी
हमारे पास टेक्नोलॉजी पेटेंट है हमारे पास
नहीं सर वैसे पॉजिटिव
तो पॉजिटिव।
हरियाणा सरकार ने भी जांच रिपोर्ट में गौमांस मिलने की पुष्टि की है। ये नमूने राज्य गौसेवा आयोग को मिली शिकायत के बाद लिए गए थे। हरियाणा गौसेवा आयोग के प्रमुख भनीराम मंगला ने बीबीसी को बताया,
हमारे पास शिकायत आई थी कि जो बिरयानी बिक्री है उसमें गौमांस का इस्तेमाल हो रहा है। अब तो हमने मतलब कहा कि सैंपल भर लो और सैंपल भर के लैब को भेज दिए। अगर मान लिया कोई दूध में मिलावट करेगा, खाने की चीज में मिलावट करेगा, उसकी शिकायत आएगी, किसी हलवाई की शिकायत आएगी, तो उसमें भी तो सैंपल भर के जाते हैं। अगर सैंपल फेल हो जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
हरियाणा में गौमांस रखने, खाने और उसके कारोबार पर पाबंदी है, इसके लिए सजा का भी प्रावधान है। गौ सेवा आयोग के प्रमुख मंगला बताते हैं,
जो गो हत्या करेगा 3 साल से 10 साल से सजा का प्रावधान है, 1 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है, और जो गोमांस खाएगा रखेगा उस पे 3 साल से 7 साल तक सजा का प्रावधान है।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि जांच रिपोर्ट पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। वो कहते हैं कि हरियाणा में गायों की रक्षा के लिए कानून पारित हो चुका है और कानून की रक्षा करना सरकार का काम है। उधर गौसेवा आयोग के प्रमुख भनीराम मंगला का दावा है कि मेवात में पंचायतों ने फैसला किया है कि बकरीद पर गायों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी।
देखो लोगों को समझ में आ गई ये बात कि लोग अपना आप ही इस काम को छोड़ रहे हैं और अपने सही लाइन पर आ रहे हैं। आज जो है मुझे रिपोर्ट मिली है कि जगह जगह पंचायतें हो रही है मेवात में और मुसलमान सब ये कह रहे हैं गाँव के कि भाई ये अच्छा कानून है, तो अपने आप ही इसको फैसला कर रहे हैं। कुर्बानी जो आ रही है 13 तारीख की, इसमें गो की कुर्बानी नहीं होगी।
मंगला कहते हैं कि उन्होंने गौमांस के कारोबार में लगे लोगों से कहा है कि वो दूसरा कारोबार करें, सरकार और आयोग उनकी मदद करेगा। उधर हरियाणा सरकार के मंत्री विज का कहना है कि इस कार्रवाई के जरिए किसी पर दबाव बनाने की मंशा नहीं है। प्रशासन को भी निर्देश दिया जाएगा कि किसी को बेवजह परेशान न किया जाए।
मेवात से लिए गए बिरयानी के नमूनों में गौ मांस की पुष्टि, ये थे वात्सल्य राय। उधर मेवात में बिरयानी के सैंपल लिए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद बिरयानी की कारोबार में लगे लोगों की चिंता का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात की और सबसे पहले पूछा कि सरकार को जांच रिपोर्ट में क्या जानकारी मिली है।
की रिपोर्ट ये आई है, 7 के 7 सैंपल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं और उनमें जो है गाय का मांस पाया गया है।
क्या जहां वो जांच कराई गई है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की जो है, वो क्या इस तरह की जांच करने में सक्षम है?
हाँ, पूरी तरह से सक्षम है। और जैसा बताया भी गया कि उन्होंने जो मानक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरीका अपनाया जाता है उसके तहत ही उन्होंने जांच की है।
तो ये जो सैंपलिंग की कार्रवाई की गई सरकार की तरफ से, इसकी वजह क्या थी? क्या ये एक अभियान के तौर पर आप चला रहे हैं?
नहीं, अभियान के तौर पर तो बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी फीडबैक आई थी कि इस प्रकार का हो रहा है, तो इस कारण से हमने जो गौ सुरक्षा फोर्स बनाई हुई है उसकी जो हेड हैं IPS भारती अरोड़ा और हमारे गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें ये चेक करना चाहिए। उनके पास पुख्ता जानकारी थी इस बात
की। अब ये रिपोर्ट आ गई है, आगे सरकार का क्या इरादा है?
इसमें तो हमने अपने प्रदेश में बहुत सख्त कानून बनाया है कि गौ के लिए, और उसमें कोई भी गौ के मांस की, बीफ की अगर किसी भी प्रकार से तिजारत करता है, व्यापार करता है या यूज करता है, तो जो भी कानूनी प्रावधान है उसमें उस कानूनी प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई होगी।
तो क्या इसकी सैंपल की आप क्या कोई दोबारा जांच कराने का भी इरादा रखते हैं?
नहीं, सैंपल हमेशा 2 लिए जाते हैं, जब भी कभी सैंपल लिए जाते हैं। अगर कोई चैलेंज करता है तो दूसरा फिर किसी और लैब से भी करा दिया जाता है।
रिपोर्टें इस तरह की भी हैं, जो इस तरह की कार्रवाई हुई, सैंपलिंग हुई, तो उसको लेकर लोगों के अंदर एक दहशत का भी माहौल है, इस पर सरकार का क्या ध्यान है?
देखिए, दहशत उन्हीं लोगों में हो सकती है जो बीफ का इस्तेमाल कर रहे होंगे। दूसरे लोगों को तो किसी भी प्रकार से किसी दहशत में आने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, और उनको पूरी तरह से हम आश्वस्त भी करना चाहते हैं। हम प्रशासन से भी कहेंगे कि भाई सबका कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए, किसी को बेवजह परेशान करने की बिल्कुल मंशा नहीं है। ये तो खाली क्योंकि इनपुट था, तो इनपुट के आधार पर ही ये किया जाए।
कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई, ये थे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज।
BBC इंडिया बोल।
आम आदमी पार्टी नैतिक संकट के घेरे में, दिल्ली में कथित सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद हटाए गए महिला कल्याण मंत्री, फर्जी डिग्री के आरोप में कानून मंत्री गए जेल, पंजाब में कई आरोपों से घिरी पार्टी की टूट का खतरा। ऊंचे नैतिक मानदंडों की राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी कैसे निपटेगी इस संकट से, आप क्या सोचते हैं? कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 10 सितंबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कल अयोध्या में हनुमानगढ़ी की यात्रा जितनी चर्चित रही, उससे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी और हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास की मुलाकात रही। राहुल गांधी ने करीब 15 मिनट तक महंत ज्ञानदास से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन इस मुलाकात के बाद हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने महंत ज्ञानदास से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि उनसे मुलाकात के पीछे राहुल गांधी का मकसद क्या था।
बता दें, एक कहावत है, अवधपुरी में रम रहे रघुकुल अवध नरेश, यही पर विपदा परत है सोई आवत ही देश।
तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि राहुल गांधी,
अब हम इसका मतलब आप अब समझ जाइए, हम बता दिया गोलमाल जो है गप है, समझे आप? अब राहुल गांधी या उनके पार्टी के लोग, राहुल गांधी अपने, हर नेता अपने पार्टी का कल्याण चाहता है, चाहे राहुल जी हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी के नेता हो तो अपना ही कल्याण चाहता है। तो ठीक है, वो चाह रहे हैं तो अपने पार्टी कल्याण चाह रहे हैं, अपने लोगों का कल्याण चाह रहे हैं, देश का कल्याण चाह रहे हैं, तो उसमें कौन अनुचित क्या बात है, ठीक तो है।
एक चीज़ बताएं महंत जी कि ये पहले से तय ये आपकी बातचीत थी या फिर ये अचानक बना?
हमको नहीं पता इसके बारे में, हमारे तय उनके जान पहचान भी नहीं था, कोई तय भी नहीं था। एक हमको कल रात में पता लगा कि यहाँ का अधिकारियों को खुला है, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, आशीर्वाद लेंगे तो दे, ठीक है।
कोई खास बातचीत उनसे हुई?
यही खास हुई, आशीर्वाद से बड़ा और खास होता है। लेकिन हमको लगता है कि अभी जो बाबू भाई मस्जिद जो रिपेयरिंग करवा रहे हैं, हमने इनको सौंप दिया है, हम लोगों का मस्जिद था, उससे ज़्यादा प्रभाव पूरे देश में गया है, तो लोग अच्छा समझ के हमारे पास आए।
एक चीज़ ये भी कही जाती है मान जी कि चूंकि ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि साधु संत जो है वो बीजेपी समर्थित हैं, ऐसा कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और महंत जी का एक दृष्टिकोण थोड़ा सा जैसे आप बता भी रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मंदिर सब चीज़ों का, तो कुछ इस वजह से राहुल गांधी ने
सुनिए, साधु संत अगर बीजेपी समर्थित होते तो मुलायम सिंह सर यहाँ जो है अखिलेश सरकार क्यों रहती, वही नहीं रहते, ये सब बकवास है। बीजेपी समर्थित कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं है, सबको सब मानते हैं, और बीजेपी साधु संतों को कभी कल्याण नहीं करती है, कल्याण ही करती है, वो सदा उसका हानि ही पहुँचाती है, मानवता को समाप्त करना चाहती है। बीजेपी को हम लोग बीएसपी को स्वीकार ही नहीं कर सकते कभी।
नहीं, मेरा कहने का मतलब कि आपकी जो जिस तरह की विचारधारा है उनसे मेल जोल खाती है, क्या इसी वजह से संतों की एक विचारधारा को वो भी अपने अपने पक्ष में करना चाहते
हैं? हम बता दें कि संतों का जो संत होगा यही ही विचारधारा, धर्म संतम धर्म समन्वय का विचारधारा संतों को होता है। अब कोई अपना विचारधारा बदल दे कट्टरपंथी का तो उसको हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन जो संत होता है उसके लिए कोई जात पात से कोई लेना देना नहीं है।
मान जी, इस बीच और भी कोई इसी पार्टी के नेता लोग आए दर्शन करने तो अक्सर आते होंगे, लेकिन आपसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात किसी ने?
बराबर तो अभी शिवपाल जी आए थे, उसके पहले आए थे, उनसे बराबर बात हुई। अभी मुख्यमंत्री जी बुलाए थे अखिलेश जी, वहाँ उनसे बात हुई, वो बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे हमको। तो हमारे कहने का अभिप्राय है कि ऐसे तो नेता लोग मिलते रहते हैं, कोई या बुलाता है कोई आता है, तो हम लोग मिलते रहते, आशीर्वाद देते हैं, हमारा काम है।
बीजेपी किसी नेता ने इधर हाल में आपसे मुलाकात की?
जब बीजेपी को हम जो है बात के द्वारा डंडा मारा करते तो हमसे क्यों मिलेगा कोई?
आशीर्वाद लेने आते रहते हैं नेता, ये कहना था महंत ज्ञान दास का। जहां कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी की यात्रा कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां उत्तर प्रदेश में धुआंधार यात्रा कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में पार्टी की राज्य इकाई ही अपने स्तर पर चुनाव मैदान में उतरी हुई है, लेकिन राज्य की कांग्रेस सरकार और संगठन में खटपट भी किसी से छिपी नहीं है। सतत विकास संकल्प यात्रा की शुरुआत आज टिहरी जिले में देवप्रयाग से की जाएगी, जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है और गंगा बनती है। बीजेपी ने कांग्रेस की इस विकास यात्रा को विनाश यात्रा बताया और कहा कि ये उनकी अंतिम यात्रा होगी। देहरादून से शिव जोशी की ये रिपोर्ट। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरी खबर की बात करते हैं। भारतीय रेलवे की राजधानी शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ियों से कल से फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू हो गया है। इन रेलगाड़ियों में शुरुआती 10% टिकटों की बिक्री के बाद बेस प्राइस पर किराए बढ़ते जाएंगे। ये बढ़ोतरी 40-50% तक होगी। दलील दी जा रही है कि अमरीका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई जगह रेलवे टिकट में किराए तय करने की यही प्रणाली लागू है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इसे लेकर पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल से बात की और सबसे पहले उनसे किराए निर्धारण की नई प्रक्रिया के बारे में उनकी प्रतिक्रिया पूछी।
मैं इसको बिल्कुल नाजायज समझता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हमारे ये चीजों के लिए नकल बाहर से नहीं की जा सकती। हिंदुस्तान में जो रेल का सफर है ये एक जरिया है गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, सभी के लिए, एक बिल्कुल आम आदमी के लिए सफर करने का। और इसमें अगर हम ये तरीका इस्तेमाल कर देंगे, अगर एक गाड़ी में मान लीजिए 150 सीटें हैं, 700 भी मान लीजिए पूरी ट्रेन की हैं, तो उसमें सिर्फ 10% पहली सीटें बिल्कुल नॉर्मल किराए पे होंगी, उसके बाद किराया बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसको आप डेढ़ गुना ले जाएंगे, यानी कि 150% किराया हो जाएगा। और ये कोई सुधार या कोई किसी चीज से इसका कोई संपर्क नहीं, ये सीधा एक बिल्कुल इसको व्यापारीकरण करने वाली बात है। इसकी को तो वापस लेना चाहिए, किसी ढंग से ये ठीक नहीं। ये इन लोगों के लिए जो अच्छे दिनों की बात करते हैं बिल्कुल उसके विपरीत है ये बातें।
जी बंसल साहब, इसमें दलील ये दी जा रही है कि ये जो फ्लेक्सी फेयर लागू किया जा रहा है इससे केवल 0.65% यात्रियों पर ही असर पड़ेगा, जो इन गाड़ियों में सफर करते हैं, ये हाई एंड वाले पैसेंजर हैं।
बात गलत दलील है। अगर आज इसमें कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये सभी ट्रेनों में होगी, ये कहाँ गारंटीज है इन चीज की? और अगर नहीं भी औरों पे करना, अगर इन ट्रेन पे भी करना है, इन पे किस कारण करना है? ये इनके क्या बहुत बढ़िया वो बना रहे हैं आप, जैसे हवाई जहाज होता है वैसी सर्विसेज देने के लिए तैयार है? 50% किराया बढ़ा देना और बुकिंग 4 महीने पहले शुरू होती है। कोई आदमी अपनी बुकिंग पहले ही करवा रहा है, पहले दिन में 10% हो गई जब किसी तारीख के लिए बुकिंग खुलती है, यानी कि 4 महीने पहले भी उनको 150 गुना देना पड़ जाएगा। कहाँ की ये बात है
जी? एक दलील ये दी जा रही है कि हर यात्री पर 73 पैसे खर्च करती है रेलवे और 37 पैसे ही उसको मिलते हैं, यानी केवल 56% पैसा ही वापस मिल पाता है, बाकी पैसा सरकार को सब्सिडी के तौर पर देना पड़ता है।
ये आज तक किया है ना, रेलवे एक आम साधारण आदमी का सफर का मोड है, पहले इनको और कोशिशें सब करें। कोई चीज और नहीं, किसी ढंग का इन्होंने कोशिश किया कि कहां से अपने बढ़ाए जा सकते हैं, अपने आमदनियों के साधन बढ़ाए जा सकते हैं इनका रेलवे, फिर उसके बाद ये करना चाहिए।
जी आप रेल मंत्री रहे हैं, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे घाटे से उबारने के लिए?
तरीके ढूंढे जा सकते हैं, रेवेन्यू मॉडल्स और लिए जा सकते हैं, प्रॉपर्टी के इस्तेमाल ठीक ढंग से हो सकते हैं रेलवे पे, स्टेशन पे किया जा सकता है, वहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे था कि वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने शुरू करें, वहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल ठीक हो पाए, एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए बहुत बड़ा हो सकता है। स्क्रैप के ढेरों ढेर लगे पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह आप कहीं भी सफर कर रहे हैं आपको साइडों पे ट्रेन्स के नजर आएगा, गर्डर्स पड़े हैं बहुत बहुत देर से जो रस्ट हो रहे हैं, जंग लग रही है जिनको, उन सभी चीजों को उठाएं, उनको बेचें और उनसे एक बार देखें क्या कितना पैसा जुटा सकते हैं, कितना बनता है, फिर आगे और करने की कोशिश करनी चाहिए इनको।
रेल घाटे से निपटने के लिए कई उपाय हो सकते हैं, ये थे पूर्व रेल मंत्री पवन बलसन, उनसे बात कर रहे थे वात्सल्य राय। आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, सुशीला सिंह के साथ, और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का। हरिता कांडपाल स्टूडियो आ चुकी हैं। हरिता
जी, सबसे पहले बात करते हैं विवादित इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नायक की। आज कई अखबारों की सुर्खियों में है वो। उनके एनजीओ द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने लिखा है कि उनके एनजीओ को राजीव गांधी ट्रस्ट को उनके एनजीओ ने 50 लाख रुपए दिए थे, और इसे लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनके FCRA लाइसेंस को रिन्यू करने यानी कि दोबारा जारी करने को लेकर पहले ही गृह मंत्रालय के 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका था और अब 3 और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, ये इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है। इसके अलावा इसी खबर पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि कांग्रेस ने सफाई दी है कि ये जो पैसा आया था जकीर नायक के NGO से वो राजीव ट्रस्ट में गया था और उसे वापस लौटा दिया गया है, जबकि जकीर नायक के NGO ने कहा है कि ऐसा कोई पैसा उनके पास वापस नहीं आया है। हम श्रोताओं को बता दें, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि इस ट्रस्ट में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तीनों ही इसमें ट्रस्टी हैं। बाकी जिस खबर की आज सारे अखबारों में चर्चा वो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के जो LG हैं और केंद्र और अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच जो तनातनी चलती है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो जो LG को शक्तियां दी गई हैं उसको लेकर जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया था उस पर वो स्टे नहीं लगाएंगी, रोक नहीं लगाएंगी, और जो उनकी शक्तियां हैं वो तो जारी रहेंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिल्ली को कौन चलाएगा, इस पर जो है द हिंदू अखबार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली को कौन चलाए, LG चलाए, केंद्र सरकार चलाए या दिल्ली सरकार चलाए, इस पर एक कानून साफ तौर पर आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस पक्ष में है। और इसके अलावा बेंगलुरु में कल बड़ा हंगामा रहा, द हिंदू अखबार ने लिखा है कि कावेरी जल जो विवाद चल रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, उसको लेकर बेंगलुरु में कल हंगामा हुआ और लिखा है कि बेंगलुरु में रेल और हवाई यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवेंद्र गौड़ा जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर उन्होंने बातचीत की है और कावेरी विवाद पर चर्चा की है। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स अखबार की खबर है कि भारत प्रशासित कश्मीर में अलगाववादी नेता सैयद शाह गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान तो दोस्त है और भारत जो है उसने कब्जा किया हुआ है, श्रोताओं को बता दें कि अलगाववादियों को मिलने वाले फंड और उनको मिलने वाली सहूलियतों पर काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है और उसे वापस लेने की बात कही जा रही है। इसके अलावा नव भारत टाइम्स में एक खबर छपी है जिस पर सभी के काम की ये खबर है, जल्द ही जो डिग्रियां हैं वो ऑनलाइन कर दी जाएंगी, 2017 से ये ऑनलाइन कर दिया जाएगा, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के ज़रिए ये किया जाएगा।
जी, समाचार पत्रों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिता कांडपाल आपका। और श्रोताओं को बता दें कि तकनीकी कारणों की वजह से हम शिव जोशी की रिपोर्ट आपको नहीं सुनवा पाए थे। बता दें कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है उत्तराखंड में टिहरी ज़िले से देवप्रयाग से एक यात्रा शुरू कर रही है। इस यात्रा पर सुनते हैं शिव जोशी की ये रिपोर्ट।
मोदी जवाब दो, भाजपा जवाब दो के नारे के साथ उत्तराखंड कांग्रेस की सतत विकास संकल्प यात्रा की शुरुआत अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम स्थल देवप्रयाग से की जा रही है। इस यात्रा का आगाज करने मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय मौजूद रहेंगे। किशोर के मुताबिक देवप्रयाग का उत्तराखंड की जनता के लिए विशेष महत्व है।
असुरों ने बहुत अच्छा काम कर दिया, फिर जैसे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उत्तराखंड में, तो ये देवप्रयाग क्योंकि वहाँ से माँ गंगा का जन्म होता है, हम वहाँ से भी उसकी शुरुआत करें और उसमें हम दो तीन चीजें रखेंगे। एक तो जो हमारी सरकार ने जो भाजपा आरोप लगा रही है कि 60 साल में हम लोगों ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, उसके बारे में लोगों को बताएंगे।
पहले ये यात्रा 12 सितंबर को नैनीताल के खटीमा से शुरू होनी थी लेकिन बाद में ये कार्यक्रम बदल दिया गया। बीजेपी ने इस विकास यात्रा की खिल्ली उड़ाते हुए आरोप लगाया कि विकास के नाम पर प्रदेश सरकार ने राज्य में खुली लूट मचा रखी है, लिहाजा ऐसी यात्राएं उसके लिए घातक ही साबित होंगी। बीजेपी सांसद भगत सिंह कोश्यारी,
इसलिए विकास यात्रा नहीं, मैं सोचता हूँ ये उनकी विकास यात्रा होगी। अच्छा ये हो कि वो जिस काम के लिए उनको राज्य में बैठाया है उस काम को करें और ऐसी बीजेपी के नकल करके वो यात्रा करेंगे तो शायद उनकी जो कांग्रेस की अंतिम यात्रा सिद्ध होगी।
जो हमले बीजेपी राज्य सरकार पर करती है उसे और बड़ा स्वरूप देकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर करने की योजना बना चुकी है। इन यात्राओं में अपनी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही जाएंगी, केंद्र के कथित राज्य विरोधी रवैये के बारे में भी जनता को बताया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय,
आगे यहाँ से उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो सके और ये गूंज पूरे देश में जाए, जब 2019 का चुनाव हो तो देश भी भाजपा से मुक्त हो सके।
बीजेपी ने चुनावों के लिए दो केंद्रीय मंत्रियों धर्मेंद्र प्रधान और जेपी नड्डा को लगाया है। उधर कांग्रेस से भी यूं तो अंबिका सोनी और गुलाम नबी आजाद बतौर प्रभारी हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की ओर से फिलहाल इन प्रादेशिक यात्राओं में आने की संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ही एक तरह से चुनावों की कमान संभाल रहे हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस सत्ता में लौटेगी।
जो उनके सवाल उन पर बातचीत कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो कुछ डेवलपमेंट में सत्तारूढ़ दल के रूप में हमने किया है उसका ब्यौरा भी और उनका उत्साह भी कांग्रेस को सत्ता में वापस आएगा।
लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि हाल के दिनों में कांग्रेस सरकार और संगठन में तनाव गहरा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भले ही पुराने दोस्त हों लेकिन पिछले दिनों बगावत कांड के बाद से दोनों एक दूसरे से खींचे खींचे नजर आते हैं। दोनों को सुलह के लिए पिछले दिनों दिल्ली भी तलब किया गया था। इन टकराहटों के बावजूद कांग्रेस को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के प्रति लोगों में कई मामलों पर नाराजगी का जो फीडबैक उसके पास है उससे उसे फायदा होगा। उधर बीजेपी में भी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी से घमासान मचा है। बिना चेहरे के उतरने से संभावित नुकसान की बात कई पार्टी नेताओं ने दबी जबान से मानी है। शिव जोशी, बीबीसी देहरादून।
उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी टिहरी से करेगी यात्रा शुरू, ये थे शिव जोशी। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। सीरिया में शांति बहाली के लिए जिनेवा में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक योजना पर सहमति बन गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि इसके तहत 12 सितंबर की शाम से ही युद्ध विराम लागू करने और विपक्षी गुटों पर सीरियाई सरकार के हवाई हमले रोकने का प्रस्ताव रखा गया है। अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के विरोध के बावजूद अमरीकी कांग्रेस ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 हमले के सिलसिले में एक अहम बिल को पारित कर दिया है। 9/11 हमलों के पीड़ित परिवार वालों को सऊदी अरब सरकार पर मुकदमा करने की इजाजत देने वाले विधेयक को पारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण का कड़ा विरोध किया है। चीन और अमरीका समेत 15 सदस्य देशों की बैठक में तय किया गया कि तुरंत प्रभाव से उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जाए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने भी उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण की कड़ी आलोचना की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में गिरफ्तार की गई 3 संदिग्ध महिलाओं को चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट से निर्देश मिलते थे। पेरिस के अभियोजक फ्रांसवा मोलेंस ने ये जानकारी दी है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे 8 बजे विश्व भारती में दोबारा होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।